आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS पर मैं हूँ अनीता बरार। इस वर्ष यानी 2025 में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ये गीत केवल एक कविता नहीं बल्कि भारत की एकता, त्याग और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक बना। आज बात की है कल्चरल हिस्टोरियन, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में रिसर्च असिस्टेंट और पुराई ग्लोबल इंडिजिनस हिस्ट्री सेंटर से एफिलिएटेड डॉक्टर सृष्टि गुहा के साथ कि कैसे 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की ये रचना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन गई और लाखों भारतीयों को नई ऊर्जा दी थी इस गीत ने। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की, तो सृष्टि गुहा बताती हैं।
उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बात करने से पहले मैं ये पहला बात करना चाहती हूँ कि बंगाल में क्या हो रहा था उस टाइम, बिकॉज एज ए हिस्टोरियन मैं इसको कंटेक्सचुअलाइज करना चाहती हूँ कि उस टाइम क्या हो रहा था। ऑफ कोर्स हम लोग का रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जो बहुत ही ज्यादा आफ्टर जिसके बाद ब्रिटिश बहुत ही बौखला गए थे कि इंडिया से ये कैसे हो गया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ब्रिटिश क्राउन इंडिया पर टेक ओवर कर गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तब बंद हो गया और फिर अब इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर सन्यासी रिबेलियन हुआ, फिर सबसे इम्पोर्टेंटली इस टाइम इंग्लिश एजुकेटेड, जो इसको बोलते हैं मिडिल क्लास इंटेलिजेंस या भद्र लोग क्लास, आगे बढ़ने लग गए। लेकिन इस समय में फिर बहुत ही डिफरेंसेस होगी कि हम दिशाहारा थे, असंतुष्टता है कि हम लोग क्या जा रहे हैं। हम लोग इस भारत की जो हम लोग जो विजुअलाइज करना चाहते हैं, हम लोग ये कहाँ जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत असंतुष्टता थी। और बंकिम चंद्र बाय 1865-1870 ऑलरेडी मशहूर एक लेखक के हिसाब से ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके थे। उनके ऑलरेडी 2 बुक्स निकल गए थे, एंड ऑलरेडी बंग दर्शन के जो पत्रिका ऑलरेडी वो एडिट करते थे, तो इस तो अपने आप को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके थे। उनकी जो बोलते थे लोग सुनते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर 1875, इसका भी जो बहुत डिबेट है उन्होंने कब लिखा, कहाँ लिखा, तो किस साल में लिखा, तो बाय नाउ हम मोर ऑर लेस एस्टैब्लिश करके कह सकते हैं जिस हम लोग 7 नवंबर 1875 मोर ऑर लेस एक्सेप्टेड डेट है कि उन्होंने ये वंदे मातरम लिखा। तो वो बहुत हमेशा से वो देशभक्त थे, उनके सामाजिक जिम्मेदारी बहुत प्रकट रूप में उनकी भावनाएं थी। तो वो चाहते थे कि ये जो युवा भारत, यंग इंडियंस की तरफ वो कैसे अपने इतिहास को देखे, नई रूप में देखे, अपने ये भारत मातृभूमि को किस तरह विजुअलाइज कर सके, कैसे। और ये सबसे मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो हम आनंद मठ के बारे में बात करेंगे कि हम भारत एक माँ की तरह है, भारत के हम लोग लड़ सकते हैं, जिससे वो हमको इंस्पायर करने के लिए कि कैसे युवा उठ सकती है, लड़ सकती है, प्रेरित होके इस भारत माता अपने मातृभूमि की तरह लड़ सकती है। तो ये जो सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन कैसे प्रेरित कर सकते हैं, ये सब भावनाएं उनके दिमाग में चल रही थी। और ये डायरेक्टली उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये हम लोग को भी नहीं पता, क्योंकि डायरेक्ट उनके वर्ड्स, उनके डायरी या कोई हम लोग को एक्सेस नहीं है। तो हम लोग सॉर्ट ऑफ जस्ट क्या बोल रहे थे हम लोग ओनली डिस्कस कर सकते हैं। एंड ये जाना माना जाता है कि ये जस्ट 2-3 पन्ने जो थे ड्रॉअर में उन्होंने रख दिया, एंड बस वैसे उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कि मैं क्या करूंगा। उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि उन्होंने ये जो विजुअलाइज किया था कि ये बहुत ज्यादा जिस तरह कितने कितने सालों तक ये फेमस हो गई, उन्होंने ये भी नहीं सोचा था। तो ये जो भावनाएं चलती थी उन्होंने बस लिख दिया ये पंक्तियां बहुत सुंदर तरीके से, संस्कृत बंगाली के कॉम्बिनेशन, जो बहुत ही अजीब सोचा माना जाता है कि उन्होंने क्यों संस्कृत और बंगाली की कॉम्बिनेशन में ये क्यों पंक्तियां लिखी. एंड देन बाद में तो ये जाने माने पता ही हमको फिर कैसे बंग दर्शन में उसकी अंश अलग अलग अंश पब्लिश होने लगे और फिर अल्टीमेटली वो पोयम को इंसर्ट किया गया आनंद मठ में.
आनंद मठ में, और आनंद मठ जैसे कि आपने अभी बात ही की है, जो रिवोल्ट चल रहा था उसमें जो सन्यासियों का रिवोल्ट था, आनंद मठ की पृष्ठभूमि वही थी.
आनंद मठ उन्होंने हिस्टोरिकली तो सन्यासी रिबेलियन के ऊपर बेस किया था. चारण जो करते थे उसके जो सन्यासी संतान जो बुक में जो जो वंदे मातरम बहुत ही उसको उच्चकार बोलना थ्रू आउट द बुक है, और ये पूरा जो पोयम है in its full, all the full entirety include किया गया book में, and फिर तो rest is history as we know after that.
जी, अच्छा यहाँ पर मैं आपसे एक जानकारी और लेना चाहूंगी, हो सकता है कि वो अधूरी हो. कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि उनके साथ में कहीं क्रिकेट के मैदान में कुछ उनको अपमान का सामना करना पड़ा था और शायद उससे उनका मन बहुत विचलित था, और जब वो अपने घर जा रहे होंगे या जहाँ भी होंगे वो वहां बैठ के उन्होंने ये लिखी. तो ये जो ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर की जो बात आती है कि उन्होंने उनका अपमान किया, कुछ इतिहासकार बताते हैं.
जी हाँ, ये भी गॉरिक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेन ऑफ थॉट है कि हाँ वो अपमानित हुए थे. सबसे इंटरेस्टिंग है वो खुद सरकारी ऑफिसर थे. वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, तो उसकी जो उनकी जो वो पोजिशनैलिटी है कि खुद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं और फिर ये ऐसे गीत लिखते हैं या ऐसी पंक्तियां लिखते हैं जो पोटेंशियली विद्रोही में मानी जाती है या एटलीस्ट तो ये दो चीजें इसको कैसे हम देख सकते हैं. और ये जो अपमानित किए गए थे शायद उनके वो फिर गुस्सा हो गए कि शायद वो सोचे कि नहीं मैं क्या अपने कर सकता हूँ, मैं अपने पोजिशनैलिटी में अपने जो मैं अपलिखित वर्ड से मैं क्या कर सकता हूँ. तो शायद ये उन्होंने ये सोचा कि वंदे मातरम मे बी, बट अगेन उनको ये नहीं पता था कि वो कितने, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जितनी क्या पावर थी इन पंक्तियों में
उनके जाने के बाद.
एग्जैक्टली, बिकॉज वो तो फिर आई थिंक
1894 में बंकिम चंद तो चले गए.
हाँ, तो उनके बाद उनको ये मालूम भी नहीं था, बिकॉज अपेरेंटली आई थिंक देयर इज अ कोर्ट की वो किनको एक बोले कि ओ ये देखना बाद में देखना ये कितना फेमस होगा.
हाँ.
बिल्कुल सच हो गया. मुझे लगता है उनको भी इतना अंदाज नहीं था कि कितना जेन्युइनली कितना ये फेमस हो जाएगा. इट्स अमेजिंग. और कैसे उन्होंने अनगिनत भारतीयों को कैसे प्रेरित किया.
हाँ, और वो एक इतिहास में बदल जाएगा इसकी तो कल्पना नहीं की. अच्छा, जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में के आसपास इसके ऊपर बैन लगा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और जिसने भी गाने की कोशिश की 5 रुपए का था उस समय थी.
ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो विभाजन हुआ 1905 में, ये वंदे मातरम की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आई थिंक माना जाता है.
SBS पर मैं हूँ अनीता बरार, और भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज हम बात कर रहे हैं कल्चरल हिस्टोरियन डॉक्टर सृष्टि गुहा के साथ.
ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो विभाजन हुआ 1905 में, ये वंदे मातरम की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आई थिंक माना जाता है. मैंने बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब पार्टीशन अनाउंस हुआ तो पहले बहुत ही हजार यंग जो स्टूडेंट्स थे वो कलकत्ते में टाउन हॉल की तरफ फिर गए, और फिर वो सबसे पहले माना जाता है कि वो नारा बन गया, एक पॉलिटिकल नारा बन गया. और सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि ये एक फ्यू कोई उदाहरण है वर्ल्ड में कि गाना तो फेमस हुआ ही है, लेकिन खाली उसकी टाइटल, उसका बस बोलना, उच्चारण करना, खाली वंदे मातरम बोलना सबसे उससे गान से भी ज्यादा फेमस हो गया. तो ये जो स्टूडेंट्स जो फिर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जब विभाजन के अगेंस्ट और स्वदेशी के जो मूवमेंट जहाँ से शुरू हुआ, वो लोग सबसे पहले वंदे मातरम उच्चारण किए, झंडे लहराने लग गए. और फिर बिकॉज बार बार इतनी प्रेशर बिल्डअप कि ब्रिटिश बोले नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको सेंसरशिप और आपने जैसे पता कि रुकावट लगाने लग गई, फाइन होने लग गया 5 रुपए. बहुत स्टूडेंट्स के पास 5 रुपए की वो फाइन लगे, 5 रुपए उस समय बहुत ज्यादा थे. एंड उस समय भारतीय उभर आ गए, क्योंकि ये जो प्रेशर था कि वो लोग और नहीं मानना चाहते थे, लोग गुस्से थे कि हमारे ये प्रिय जो बंगाल की जो भूमि थी उसको विभाजन किया जा रहा था। और फिर वंदे मातरम संप्रदाय शुरू हुआ कि वो लोग निकालने लग गए कि प्रोसेशंस निकालने लग गए कि लोगों को और डोनेशन ड्राइव करने लगे। रविंद्र टैगोर जी खुद वो इस प्रभात फेरियों में पार्टिसिपेट करते थे। वंदे मातरम जर्नल्स और निकालने लग गए बिपिन चंद्र पाल और श्री अरविंद घोष के अंदर। वंदे मातरम का जो मैगजीन शुरू हुई वो खुद ये जो स्वतंत्रता अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो, मातृभूमि के लिए लड़ो, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वो खुद एक मैगजीन बन गई। और सबसे इंटरेस्टिंग ये कि वंदे मातरम इस टाइम खाली बंगाल में नहीं था, लाहौर में वंदे मातरम मैगजीन शुरू हुई। एंड देन फिर पेरिस में शुरू हुई वंदे मातरम, मैडम जी कामा ने शुरू की, इंस्पायर्ड फ्रॉम जो इंग्लिश डेरी बिपिन चंद्र पाल और श्री अरविंद घोष की वंदे मातरम। सबसे ये इंटरेस्टिंग है, इधर संस्कृत बंगाली में तो बंकिम बाबू ने लिखा था, लेकिन फिर वो तमिल, तेलुगु, मराठी, इंग्लिश में फर्स्टली ऑफकोर्स ट्रांसलेट हुई। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ने लग गया है। भारतीय जस्ट नहीं रुके, वो और चलाने लग गए, जितना उन्होंने ब्रिटिश ने और इसको चपचापने की कोशिश की वो और जोर जोर से चलाने लग गए। 1906 में कितने इंस्टेंसेस हुए कि लाठी चार्ज भी किया गया, लेकिन वो तो भी और चलाने लगे और झंडे लड़ाने लग गए। और ये जो शुरुआत थी ये रियली 1905-1906 में शुरुआत थी। 1909 में इनफैक्ट जब मदनलाल ढींगरा उनको फांसी दिलाई गई, उनके एक्चुअली लास्ट वर्ड्स थे वंदे मातरम। और ये मुझे लगता है ये बहुत ही एक इमोशनल और बहुत एक पॉइंटेंट मोमेंट है जहाँ हमारे क्रांतिकारी ऐसे उनके लास्ट मोमेंट्स में ऐसे बोल वंदे मातरम उनके लास्ट शब्द थे।
जी 1912 के आसपास जब गोपाल कृष्ण गोखले जी केप टाउन में पहुंचे थे तो उनका स्वागत भी वंदे मातरम करके किया।
जी उन्होंने ये एंड बाय देन सबसे इंटरेस्टिंग है कि मैंने ये पहले नहीं मेंशन किया कि जो भारतीय प्रेस थी, इंडिजिनस जो प्रेस थी, ऑलरेडी इन द लास्ट फ्यू साल बहुत ही उसकी बढ़ाव हो गया था, ग्रोथ हो गई, क्योंकि खुद की जो प्रेस अपने वर्ड्स अपने थॉट्स को प्रचार करना ये बहुत ही ज्यादा उभर आई थी उस टाइम।
जैसे कि आपने बताया कि भीखाजी कामा ने जो 1907 में जर्मनी में जो ट्राई कलर, तो ये एक नारा उसके ऊपर लिखा हुआ था, तो वंदे मातरम से वंदे मातरम बन जाना।
वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, वंदे मातरम जो बंगाली प्रोनाउंसिएशन है, जो वंदे मातरम ये 1905 टू 1937 तो कांग्रेस में गाया गया। 1896 में सबसे पहले रविंद्रनाथ जी ने खुद अपने स्वर में गाए थे। उस तरफ उस टाइम 1905 से पहले किसी को नहीं मानता था कि ये गाना इतना इतने जोर से प्रचारित होगा और यह प्रेरित करेगा भारतीयों को। और फिर जब 1905 में विभाजन जब अनाउंस किया गया तो आई बिलीव इट वाज लाहौर सेशन 1905 के कांग्रेस सेशन 1905 के कांग्रेस सेशन में फिर पहले वो बोले कि हर कांग्रेस सेशन शुरुआत में ओपनिंग में हम वंदे मातरम गाएंगे। और फिर 1937 में उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अब हम लोग का नेशनल गीत है। और फिर ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन चलती गई, बढ़ती गई, काफी बदलाव आते गए। जब तक फिर 1947 हम ऑफकोर्स हम लोग का इंडिपेंडेंस में तो हुआ ही। फिर 1950 में जब हम लोग के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर उसमें भी फिर डिबेट थी, राष्ट्र गान बनाएंगे, कौन सा गीत बनाएंगे। तो अल्टीमेटली जो डिबेट जो फाइनल हुई, बिकॉज उसकी जो जनगण मन की जो सिंगेबिलिटी जो बोलते हैं, इसके जो सुर था ज्यादा किसी लोगों को पसंद आया, इसलिए इवन दो वंदे मातरम की हिस्टोरिक जो सिग्निफिकेंस थी, महत्वपूर्णता थी, ज्यादा थी, बिकॉज वो जानते थे कि राष्ट्रीय गान जो है जो गाया जा सके, जनगण मन को सॉर्ट ऑफ चूज किया गया। और फिर ऑफकोर्स वंदे मातरम टू वंदे मातरम 1950 में हमारा राष्ट्रीय गीत बन गया।
बहुत अच्छा लगा सृष्टि जी आपके साथ बात कर इसके बारे में, इतने जो विस्तार में इसके इतिहास के बारे में बताया, गीत गाते हैं उसका इतिहास कितना महत्वपूर्ण है, कितना समृद्ध है और किस तरह से ये एकता का प्रतीक बन गया।
जी थैंक यू अनिता जी मेरे को बुलाने के लिए। और ये मैं बहुत ही मैं बोलना चाहती कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम आज इसका 150 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। जेन्युइनली आई वुड से कि वंदे मातरम वाज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जहां हम आज खड़े हैं, आजाद हैं, एक नए भारत में है। आज आप जैसे बोले, आज हम गाते हैं गान, बहुत प्राइड से गाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसकी क्या क्या कितनी महत्वपूर्णता थी, और जिस तरह उसने एक गान ने, उसके स्लोगन ने, उसके टाइटल ने भारतीयों को एकजुट कर दिया, एक साथ कर दिया ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए। इट्स अमेजिंग।
इस पॉडकास्ट को डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल, Facebook या Instagram पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।